मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, AFEIS के आज 13 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं थोड़ी लंबी दूरी के बारे में बात करना चाह रहा हूं, लंबी मंजिल के बारे में कह लीजिए बात करना चाह रहा हूं, और वह मंजिल है 2021 के प्री एग्जामिनेशन की तैयारी। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के अखबारों में एडिटोरियल के रूप में एक दो अखबारों ने इस पर लिखा है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, लेकिन कल के अखबारों में इस घटना की चर्चा हुई थी, और वह है जो हमारा मालाबार वाला जो तट है, जो हमारी पूरी की पूरी जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति के तहत हमारा जो पूर्वी घाट है ना, मालाबार तट, उस पर भारत नेवल एक्सरसाइज करता है, नौ सेना अभ्यास करता है, सैन्य अभ्यास उसे आप कह लीजिए, नौ सेना का, नेवल का सैन्य अभ्यास वहां होता है। 2007 में ही भारत ने बकायदे एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए, यानी कि हम कुछ लोग मिलकर के अभ्यास करेंगे, तो जापान को आमंत्रित किया था, अमेरिका को आमंत्रित किया था, सिंगापुर को आमंत्रित किया था, और तब से वो सैन्य अभ्यास चल रहे हैं। कोई देश आते रहे नहीं आते रहे, वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी जो खबर है वो सबसे बड़ी बात खबर ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने की स्वीकृति दे दिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो रहा है। इसमें तीन देश पहले से ही थे, भारत पहले से था, भारत तो था ही था क्या, अमेरिका था, जापान था, और अब ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। तो मतलब ये चार जो चतुर संगठन बना हुआ है, इसके बारे में मैंने पहले बात की थी, अब ये सैन्य अभ्यास में भी शामिल है। याद रखिए, नौ सैन्य अभ्यास, बंगाल की खाड़ी पड़ेगा, अगर आप ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो बंगाल की खाड़ी होगा। अब आप देखें कि इससे पहले जो हम लोग थोड़ी सी बात की थी कि जो चीन के जो मंसूबे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और पूरा जो ये दक्षिण चाइना जो महासागर है, हिंद महासागर क्षेत्र है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र भी हम कह देते हैं, इसमें वो लगातार अपने प्रभुत्व का विस्तार करता जा रहा है, और उसके इस मंसूबे को लेकर के जो छोटे छोटे देश हैं वो बहुत चिंतित भी हैं। तो अब चूंकि सैन्य अभ्यास में ये चारों देश एक साथ शामिल हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये भारत की एक बहुत बड़ी, आप यूं कह लीजिए कि चीन के विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करने में एक कूटनीतिक विजय है। ये स्पेशली आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए, और जब भी भारत और चीन के संबंधों को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, और हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक दो आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक आर्टिकल उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर है, शेखर गुप्ता जी का लिखा हुआ लेख है, और शेखर गुप्ता जी का बहुत, मैं बहुत ही मुक्त कंठ से प्रशंसक हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि उनको इतनी राजनीतिक घटनाएं कैसे याद रहती हैं। दौर से तो हर कोई गुजरता है, लेकिन जिस तरह से वो याद रखते हैं और फिर जिस तरीके से उन्हें प्रस्तुत करते हैं वो अद्भुत होती है। शेखर गुप्ता जी का एक लेख है, इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर के ये अपना सजेशन दिया है कि उत्तर प्रदेश को कम से कम चार राज्यों में विभाजित कर देना चाहिए, और जो उन्होंने कारण दिए हैं उसके अलग अलग कोण दिए गए हैं, है ना, कि वो राज्य क्यों विकसित नहीं हो पा रहा है, उस राज्य में क्यों माफिया गिरोह इतने ज्यादा बनते चले जा रहे हैं, डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ उसकी जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है क्यों बदतर ही बनी हुई है, इन बातों को लेकर के कई चीजें कही जा रही हैं, उन्होंने लिखी हैं। राजनीतिक रूप से भी उन्होंने कहा, एक लोकतांत्रिक पद्धति के हिसाब से भी ये न्यायपूर्ण नहीं है कि एक ही राज्य से 80 सांसद आए, और इसका मतलब है कि पूरे देश की राजनीति में उस राज्य का ही प्रभुत्व हो जाएगा। तो ढेर सारे पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। मैं चाहूंगा कि आप भले उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसको न लें, लेकिन छोटे राज्यों की उपयोगिता के संदर्भ में आप इसमें से पॉइंट्स पढ़ करके जरूर निकालें। बहुत अच्छा लेख है, और खासकर उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो इस लेख को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन में उत्तर प्रदेश के अपीयर हो रहे हो, चाहे वो यहां तक कि सिविल सर्विस में ही IAS में ही क्यों ना अपीयर हो रहे हों, क्योंकि हो सकता है कि इन सबको बेस बना करके इंटरव्यू में इस तरह का कोई क्वेश्चन उनसे पूछ लिया जाए। क्योंकि जब शेखर गुप्ता जैसे व्यक्ति लेख कोई भी लेख लिखते हैं तो याद रखिए कि वो हायर सर्किल में चर्चा का कारण बनता है, और UPSC इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस भी तैयार करती है। दोस्तों एक और मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक भास्कर का, वो आस्था के ऊपर है, आस्था बनाए रखिए, ये बहुत अच्छा लेख है। अच्छा मैं इस मायने में कह रहा हूं कि आस्था को उन्होंने केवल एक बड़े प्लेटोनिक या कह लीजिए काल्पनिक तरीके से विश्लेषित नहीं किया है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने आस्था के बारे में बताया। आस्था क्या है, विश्वास क्या है, आस्था का जीवन में क्या रोल होता है, बहुत अच्छा लेख है। मैं चाहूंगा कि आप भी इसे ध्यान से पढ़ें और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर लें। वो पॉइंट्स खासकर ऐसे राइटिंग में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग के तहत अगर आप इनमें से कुछ तथ्य डाल सकेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि वह जो आपका निबंध होगा वह थोड़ा वजनी बन जाएगा, क्योंकि बहुत से देखिए ऐसे तथ्य हैं, सामान्य तौर पर तो हम सब जानते हैं, हम आपस में एक दूसरे से बातें भी करते हैं, लेकिन बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करते, हम उनसे बिल्कुल अनजान ही रहते हैं, तो वो जो अनजान तथ्य हैं वो आपको यहां मिल सकेंगे। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है 2021 के प्री की तैयारी। आप जरूर सोच रहे होंगे कि 2020 की तो अभी हुई नहीं है और सब 2020 को छोड़ करके 21 की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब 2020 की तैयारी पर बात करने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा बातें रहनी गई हैं, अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। आप सब तैयारी कर ही रहे हैं अपने अपने ढंग से, अब उसमें क्या मैं बताऊं, और अगर मैं बताऊंगा भी तो वो अब आपके लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद रह नहीं जाएगा, और मैं बता करके आपके दिमाग में तथ्य भी नहीं डालना चाहता कि आपने तैयारी ठीक से नहीं की, बाय द वे मैं जो बात बता रहा हूं और वह आपने नहीं की है तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बेवजह कमजोर होगा कि अरे अरे हमें ये करना चाहिए था, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करें हमारा पता नहीं क्या होगा, तो अब वो स्थिति खत्म हो गई है, तो बेहतर है कि हम 2021 के बारे में बातें करें। देखिए जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, एक बात मैं आप लोगों से मित्रों जरूर कहना चाहूंगा, अगर हम खेल के रूपक को लें तो यह एक तरह का ओलंपिक गेम है, ओलंपिक है, ओलंपिक इस मायने में है कि ये सबसे बड़ा है, जैसे ओलंपिक खेल सबसे बड़े खेल माने जाते हैं, अगर आप ओलंपिक चैंपियन हो जाते हैं तो बात खत्म ही हो गई, आप विश्व के चैंपियन हो जाते हैं। तो ये सिविल सर्विस को आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आप एक ओलंपिक गेम कह सकते हैं। ओलंपिक की तैयारी कैसे की जाती है, क्या ओलंपिक की तैयारी 4-6 महीने में कर ली जाती है या 8 महीने 1 साल में कर ली जाती है? अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि लोग ओलंपिक के लिए टारगेट बनाते हैं कि अच्छा ये 2020 के ओलंपिक के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ये खिलाड़ी 2024 के ओलंपिक के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ये खिलाड़ी 2028 के ओलंपिक के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और 4 साल तक उनसे प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि एक लंबी तैयारी। सीधी सी बात है कि अगर प्रतियोगिता विश्व स्तर की है, इतनी कठिन है, तो उसके लिए तैयारी भी कठिन होगी। मेरे यहां कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप 2021 के बारे में सोच रहे हैं तो आप अब मान करके चलिए कि वक्त आ चुका है। अभी देखिए अक्टूबर की शुरुआत में एग्जाम हो रहे हैं, अगर आप अक्टूबर इसी मान लीजिए कि अगली बार भी अक्टूबर में ही एग्जाम होंगे तो 14-15 महीने बचे हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज्यादा है। वैसे आप सोचेंगे तो लगेगा अगर यार बहुत समय है, 8-10 महीने बहुत होते हैं या यहां तक कि 1 साल बहुत होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सही सोच रहे हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं तो। लेकिन हो सकता है कि अभी तो कोरोना की वजह से अक्टूबर तक यूपीएससी को एक्सटेंड करना पड़ा है, अगले साल वो थोड़ा सा समय बचाने के लिए अगर ठीक ठाक सारी स्थितियां रहीं तो इसे अक्टूबर से थोड़ा सा पहले करके सितंबर या अगस्त में ले आए, अगर ऐसा करेगा तो फिर आपके और समय कम हो जाएंगे। उस हिसाब से भी मतलब 2021 की तैयारी करने के लिए ये बिल्कुल माकूल वक्त है, बिल्कुल सही वक्त है। अब आपके दिमाग से ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि अरे यार 2021 तो बहुत दिन है और अभी देखेंगे करेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल समय आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों जो इसी से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जिसका आपके मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, अब चूंकि मनोविज्ञान पर पड़ता है तो सीधे सीधे उसका असर आपकी तैयारी पर होता है, वह यह कि आपको जो अपनी तैयारी है उसे बहुत ही इत्मीनान के साथ करनी चाहिए। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप फर्राटे भरें कि एक दिन में पता लगा कि एक एक सब्जेक्ट के 5-5, 7-7 चैप्टर निपटा दिए, 30-30, 40-40 पेज पढ़ लिए और आपको लगा कि हाँ यार ये मैंने ये किताब तो पढ़ ली। मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य होता है जब स्टूडेंट मुझे लिखते हैं ईमेल के जरिए या व्यक्तिगत तौर पर जब यहाँ हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो उस समय तो स्टूडेंट से सीधे बातचीत ही होती है, 15 दिन मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही बीतते हैं। वो बताते हैं कि सर मैंने एनसीईआरटी की किताबों की 2 रीडिंग कर ली है, 3 रीडिंग कर ली है, क्या इतना सफिशियंट है? मैं उनसे पूछता हूं कि ठीक है आपने रीडिंग तो 2 कर ली, 3 कर ली, 5 कर ली, वो उससे मेरा ज्यादा मतलब पर्पज नहीं है। मैं जो पूछना चाहता हूं यह है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे समझा कितना है, क्या आप मुझे इसका अर्थ बता सकते हैं, क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? और जब मैं उनके सामने कोई प्रश्न रखता हूं तो फिर वो गर्दन झुका लेते हैं। तो अगर आप मेरे उस सामान्य से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं या एक सामान्य से वाक्य का अर्थ नहीं समझा पा रहे हैं, तो अब आप ये बताइए कि आपने 2 रीडिंग कर ली, 3 रीडिंग कर ली, 5 रीडिंग कर ली, उसका अर्थ क्या है? दोस्तों, सिविल सर्विस की तैयारी का कोई इस बात से संबंध नहीं है कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, और साथ ही साथ इसका भी कोई संबंध नहीं है कि उस किताब की आपने कितनी बार रीडिंग की है। रीडिंग नहीं करनी है आपको, स्टडी करनी है, और स्टडी करने का मतलब है कि आपको तथ्यों को समझना है, और तथ्यों को समझने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ाई करें, समझ समझ कर पढ़ाई करें, और पढ़ने के दौरान जहां भी आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप रुकावट महसूस कर रहे हैं, तो उस रुकावट को दूर करें, चाहे जैसे भी करें, वो आपके ऊपर है कि आपके पास क्या क्या साधन मौजूद हैं, आप कैसे उस बाधा को पार करेंगे। लेकिन अगर आप उस बाधा को पार किए बिना ही आगे की यात्रा जारी कर लेंगे, तो मान करके चलिए कि आपने अपनी तैयारी में कहीं कुछ छोड़ दिया है, और ये जो कहीं कुछ छोड़ा है आगे चल करके पता लगा कि वो बहुत कुछ नुकसान करने वाला सिद्ध हो जाए। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा ये ओलंपिक गेम है, ये लंबी तैयारी की मांग करता है, और इसीलिए मैंने अभी से आप लोगों को सतर्क करना अपना कर्तव्य समझा प्री 2021 के एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, इस पर हम आगे भी बातें करते रहेंगे, इसके बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, विकास यादव, सृष्टि दहाले, अनूप राज छत्तीसगढ़ से, साहिल भाटिया, जलधीर वर्मा, राम्य शाक्य, हिमांशु अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से, और श्रुति गौतम बेगूसराय बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।